اگلی سورت حشر ہے، اس میں ایک خاص غزوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، غزوہ بنو نذیر کے نام پہ، اس کو مثال بنا کر مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بہت خوبصورت آداب سکھائے گئے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. یہود مدینہ میں پوری طرح اسٹیبلشڈ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو اس سے پہلے وہاں اوس اور خزرج، لوکل نیٹوس. جیسے آپ اور میں پاکستان کو لے تو ہمارا مادری وطن ہے. یہود وہاں باہر سے آ کر مائگریٹ کر کے ایسا چھائے کہ ان کی اکانومی پہ، ان کے اسلحے پہ، ان کے رسم و رواج، طرز زندگی پہ اس طرح ضبط ہو چکے تھے اثرات کہ لگتا تھا کہ یہ کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے صرف 7 سال، 7 ایئرز، یہ تو شروع کی بات ہے. 7 میں تو غزوہ خیبر ہوا تھا، ایک کر کے نکلا. 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینکار، بنو قریظہ. یہ قبیلے پہلے، ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا کچھ منہ ماری کی، نکل گیا. دوسرا، تیسرا، یہ سب اب سیرت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. میں کہتی ہوں یہ بھی ایک نیا باب ہے جو زندگی میں بندے کے کھلتا ہے جب وہ سیرت پڑھتا ہے. سیرت کے بغیر زندگی گزارنی بہت بڑا رسک ہے. تو یہاں اللہ نے بتایا کہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا گڑا گڑایا دشمن جائے گا، ایک ایک کر کے نکلے. کیا تھی اللہ کے نبی کی قوت؟ کوئی F-16 تھے؟ کوئی وہاں بڑے بڑے بلٹ پروف گاڑیاں تھیں؟ اللہ اکبر، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، ایمان کا روب تھا، اچھی پالیسیز تھیں، مسلمان بعمل تھے. آج بعمل مسلمان ہو جائے، باقی سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کو جہاں سے نکالا، فرمائے وہاں سے اللہ ان پر آیا جہاں سے گمان بھی نہ تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اللہ آج کے مسلمان کو ایسا کر دے کہ کم از کم دوسروں کے دل میں محبت نہیں تو روب تو آ جائے. کیونکہ مروبیت کس بندے سے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، کسی کامیاب بندے کو دیکھیے، ڈسپلنڈ، کام کرتا ہوا، روب آتا ہے. آپ اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ کہیں ہم ان کا ایکسٹرا ٹائم نہ لے لیں. بہت ڈیسنٹ بات کریں، سافٹ اسپوکن ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہوئے پہلے اپنا گلا کھنکھارتے ہیں کہ کہیں میں زیادہ اونچی نہ بول پڑوں، ہے نا؟ تو کچھ کریں گے تو روب ہوگا نا. خالی ہوا والا غبارہ ہو، ایک جھٹکے میں پھٹ جائے گا، تو خالی برتن کھڑکتے ہیں صرف. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے اندر وہ صفتیں ڈال دے، پوری دنیا ہم سے محروب ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ لی ہوتی تو دنیا میں بھی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. آگے جنگ کی کچھ جھلکیاں. تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں تھے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتے داروں اور یتام اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. دیکھیے پیچھے سورت انفال میں مال غنیمت کی بات پڑی، یہاں مال فیح. مال غنیمت ہے، دشمن سے لڑے پھر حصہ ملا، تو ظاہر ہے لڑنے والوں کا حصہ ہوگا. مال فیح کیا ہے؟ جس میں لڑنے کا موقع ہی نہیں آیا، ایسی پیسہ مل گیا، اس کی یہاں بانٹ کا ذکر ہے. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں کتنے خوبصورت طریقے سے ویلفیئر سٹیٹ بنائی جا رہی ہے. ٹیکسز نہیں ہے اسلام میں، آج بھی اگر اسلامک لا کسی ملک میں آئیں گے سب سے پہلے وہاں سے ٹیکس ختم ہوگا. آج ہے موجود مثالیں، دیکھیے مسلم ملکوں میں. ساری دنیا کیوں دبئی کی طرف بھاگ رہی ہے؟ فری پورٹ کیوں ہے؟ وہ ٹیکس نہیں ہے ادھر. سعودی عرب میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ اس بات پہ جو آگے ہمارے سامنے ہے کہ اسلام میں نظریہ माल का क्या है, यानी मनी मैटर्स में इस्लाम का खूबसूरत असूल क्या है कि कई ला यकून दूलतम बैन अलगनियाए मिनको। समझ लीजिए आज के तो पूरी दुनिया का यही इशू है, दौलत चंद हाथों में ही ना रह जाए। इस्लाम चाहता है सर्कुलेट करना। आप इसको एक मिसाल से समझें, हमारे जिस्म में खून दौड़ता है, आपने थोड़ा बहुत तो साइंस पढ़ी होगी ना, दिल के रास्ते इधर उधर से घूमता हुआ पूरे दिन कई बार जिस्म के एक एक हिस्से तक पहुंच जाता है। बस ब्लड सर्कुलेशन हमारे जिस्म की हेल्थ है ना, तो मनी सर्कुलेशन ये हमारे इस्लामी सिस्टम की हद है। माल सीज नहीं होना चाहिए, माल को ढेरों की सूरत में रखना नहीं चाहिए। और अगर मैं बात झूठ ना कह दूं, आज हम मुसलमानों का जितना माल जेवरात की सूरत में लाखों में पड़ा हुआ है, सिर्फ बेकार प्रॉपर्टीज जिस पे कोई हल नहीं चला रहा और कोई वहां अल्लाह का नाम नहीं हो रहा, मुरब्बों की मुरब्बे जमीनों की सूरत में पड़ा है, और जो पैसा दूसरे बैंकों में पड़ा है, सिर्फ ये सारा जमा कर दिया जाए तो आज हम मुसलमान खुद कफील हो जाएं। सारी एड खत्म, सारी शर्तें खत्म, हम पैसे को बांधते हैं। देखिए इस्लाम माल को बुरा नहीं कहता, कमाओ खाओ इस्तेमाल करो, खुद भी लगाओ दूसरों को लगाओ। जहां माल दिल में पड़ा या लॉकर में गया और वो साल पड़ा रहा, अल्लाह कहते निकालो पहले इसमें से ढाई तुम दो। एक बंदा सारा दिन कमाए, लाख कमाए, दोस्त के 10,000 कमाए, अगले दिन दूसरी जगह, तीसरे, सारे साल के बाद 54 ज़कात नहीं देनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी, आपको पता वजह? ये तस्वुर ही नहीं है कि साल पूरा एक चीज आपके बैंक में पड़ी रहे। आज हम बैंकों पर ट्रस्ट करते हैं, कई कई साल तक हमारा लाखों डॉलर रुपया बैंकों में पड़ा रहता है, किसी को नहीं देते कि ले लो तुम इस्तेमाल कर लो फिर दे देना। हौका कहते लो दे दिया तो वापस किसने करना। मैंने कई लोगों से इस पर पर्सनली बात की है कि आप कितने गरीब रिश्तेदार हैं, चले 5 लाख उसको दें वो दुकान शुरू कर ले, फिर कमा के देखो, कहते देना किसने वापस, तो जमा क्यों? ये मैंने कोठी बनानी है, ये मैंने बेटे की शादी करनी है, ये बेटी का जहेज है। 20-20 साल तक माएं बेटियों के जहेज के नाम पे वो अपने पुराने जेवर बैंकों में रखती हैं। हर एक अपने आप से पूछे क्या मेरा भी जेवर अभी बैंक में पड़ा हुआ है, जो अल्लाह की कसम बेटी ने नहीं पहनना, बहू को दिया तो वो कहेगी अम्मा ने पुराने जेवरात मुझे दे दिए। आज की बेटियां कोई नहीं पहनती सोना चांदी, लेकिन हौसला नहीं पड़ता। दुनिया के बैंक पर ट्रस्ट ज्यादा है, अल्लाह के बैंक में नहीं है, तो अल्लाह कहते इसको गर्दिश करो। ये सिर्फ ये नहीं कि सारा सदके में दे दो, इस्तेमाल करो। मनी की रोटेशन होती है, वो कॉम फ्लरिश करती है। तो ये असूल देखिए, आज के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस असूल को पेश करने पे मजबूर है जो 1400 साल पहले इस किताब में मौजूद है। वरना आज क्या है, अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है। एक एसी में सोता है तो एक एसी के पिछले हिस्से में सोने पर मजबूर है, जहाँ सारे कमरे की गर्मी जा रही है। आज क्यों हमारे मुल्क में गुर्बत, क्यों चोरी, क्यों अफलास, डाके क्यों? वो कहते हैं ये खुद इतना खाते हैं, हमें मजदूरी भी पूरी नहीं देते, इससे नफरत पैदा होगी। इस्लाम कहते लिव एंड लेट टू लिव, जी और जीने दो, खाओ और खाने दो, पियो और पीने दो, पहनो और पहनाओ। 4 दिन आप पहन लीजिए, फिर अच्छा दिल को लगा आप दूसरे को दे दीजिए। खाना खाया थोड़ा बनाया, कुछ खुद खा लो, कुछ दूसरों से शेयर करो। ये सिर्फ मैं अपना तामन भर लो, और याद रखे ऐसे लोगों की कभी पूरी नहीं पड़ी। हदीस में हर दिन 2 फरिश्ते उतरते हैं और एक कहते हैं अल्लाह, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन, पीछे आपको यह हदीस दी भी गई थी मुझे लगता है तीसरे बारे में, दुआ देता है फरिश्ता कि अल्लाह खर्च करने वाले को और दे। और ये कसूल याद रखें, जिसको हमारे जुबान में घर का खर्चा कहते हैं ना, मतलब किसी के घर का खर्चा हो सकता है यहाँ 100 यूरो हो, किसी का 200 हो, किसी का 400 हो, किसी का महीने का 1000 हो, है ना। जो जितने खुले हाथ से खर्च करता है ना, जाया नहीं खर्च करता है, उसको अगले दिन के लिए उतना जरूर देना है, अल्लाह ने उसका वादा। और जो कंजूसी से नाप तोल के पूरा भी नहीं आधा नहीं करना, वो कंजूसी से कह रहा है तो अगले दिन उसको भी देना है अल्लाह ने, पर कितना उतना ही देना है। बात समझ गए? तो खुले दिल को खुला मिलता है, तंग हाथों से बंद मुठियों से तो जन्नत मिलती भी नहीं है। फिर फरमाया वमा ताकुम रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुमको दें फखुजूहु उसको ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ, अल्लाह से डरो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ये आयत जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने कोट की थी उम्मे याकूब के सामने प्लकिंग के मामले में, याद है हदीस सूरत निसा में बताई थी। कहने लगी क्या भमे ना बनवाने का हुक्म कुरान में, कहा कुरान में, ढूंढती हुई आई कहीं नहीं मिला। कहा ये आयत नहीं पढ़ी, वमा अताकुम रसूलुहु फखुजूहु, तो दुआ कीजिए हमें अल्लाह के नबी का हर हुक्म लेने वाला बना दे अल्लाह ताला, फिर माल की बात, नीस ये माल उन गरीब मुहाजरीन के लिए है जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए। ये लोग अल्लाह का फजल और इसकी खुशनुदी चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता रहते हैं। यही सच्चे लोग हैं और वह इन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे। ये इन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके इनके पास आए हैं और जो कुछ भी इनको दे दिया जाए इसकी कोई हाजत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते और अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह खुद अपनी जगह मुख्ताज हो। वलौ कान बिहिम खसासा वमन यू कशुख नफ्सिही फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हकीकत यह है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। एक वाक्या है इनायत के साथ जो हम सबको भी अपने मुहासबे पे माइल करता है, जो ये सोचते रहते हैं कि अभी तो पूरी नहीं पड़ रही, किसी को क्या दे। अल्लाह के नबी के पास से एक शख्स आया, मेहमान था। इत्तफाक देखिए कि आपके किसी घर में कुछ नहीं था और उस घर में होटल मोटल नहीं थे। आपने कहा कोई है जो आज इस मेहमान को अपने घर ले जाए? जरा वो वक्त तो सोचिए, हमारे एक नहीं 50 मेहमान आ जाए, वल्ला ही हमारे घर में उनके लिए भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदा सिर्फ। साहबी ने सुना, कहा अल्लाह के नबी मैं ले जाता हूँ अपने घर। घर की असल सूरत हाल पता नहीं थी, अंदाजा तो होता है। कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा। घर के बीवी को बताया था एक मेहमान आया है और बीवी का जवाब सुनिए, सिर्फ एक बंदे का खाना है घर में। कहा बच्चे भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेहमान भी आ गया। और अरबों का एक असूल था और वो क्या कि मेहमान के साथ ना खाते तो मेहमान नहीं खाता था, बद तहजीबी समझी जाती थी। तो आज भी अच्छी बात नहीं है, बाद लोग मेहमानों को ये फील करा रहे होते हैं हम आपको खिलाएंगे, हम खिला रहे हैं, यदि आपने हमें बड़ी मुश्किल में डाला हुआ जल्दी जल्दी खाएं, और सर पे फौजियों की तरह खड़े रहते हैं और लाऊं डाल लेना का लुक में, तो आप गिन रहे हम खाएं क्या। तहजीब खाना लगाइए, जितने मेहमान है उतना पकाया हुआ है ना, उतनी प्लेटें उतने ग्लास, सुकून से आप ही खाएं। बहुत बुरा कल्चर है ये आज हमारे कल्चर में, और खास तौर पे मैं मदारत के नाम नहीं, खिलाना भी तो है ना, सारे घर को हरकत में दिया हुआ है, ये कोई तरीका नहीं है। आप ना खाएं तो अगले का तो दिल नहीं करता खाने को, वो आपका खाना थोड़ी खाने आया। बैठेंगे, बात करेंगे, और आप देखिए फितरी तौर पे खाने के दौरान बातें होती हैं, हल्की फुल्की टॉक, उससे आपस में रेपो बनता है। आज आप दावतों में जाएं ऐसे नहीं लगता घर वाले को आपने कोई सजा दी है, पहले भी काम में था, खाने के दौरान समेटता रहा, बाद में वो प्लेटें साफ कर रहा है, अब आपके तचे में जाती हूँ, अच्छा तरीका नहीं। खैर कहा देखो बच्चों को सुला दो ऐसी तपक तुपक के, बाकी रह गया खाना। जब मेहमान के सामने खाना रखोगी ना तो चिराग गुल कर देना ठीक करने के बाद ना, यानी मोमबत्ती ठीक कर रही इतने में बुझा देना, मैं ऐसे ही मुंह चलाता रहूंगा और वो खा लेगा। ये था प्लान, मेहमान को नहीं पता चला कि मेरा मेजबान मेरे साथ कर क्या रहा है, और उन्होंने यही किया, चला गया, खत्म बात। सुबह फजर पे गए, सहाबी याद रहा तूने क्या किया? लेकिन भी मैंने क्या किया, क्या खाना सारा मेहमान को खिला दिया और खुद भूखा रहा। कहा कैसे? अल्लाह ने उनकी शान में ये आयतें उतार दी कि वा युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जरा सा इस पे मुहासबा, और खसासा कहते हैं वो भूख जिसमें पेट चिपक जाए, ये नहीं हमारी तरह के बस खट्टे डकार काम हो गए वैसे खा सकती हूँ, हमारी तो भूख का भी ये हाल है ना, नहीं पेट चिपका हुआ, अंतड़ियां सुकड़ गई हैं फिर भी नहीं खाना, कितना मुश्किल है। जरा इफ्तारी के वक्त जहन में रखिए, हाँ पकौड़ा ही ना मिल जाए तो आंसू इतने मोटे मोटे, आज रोजा ही नहीं खोला पता नहीं मकरूह ही ना हो गया हो, बगैर पकौड़े के रोजा खोला, अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे जैसा भी कोई महरूम। बच्चों को देखा करें आंसू बहाते हैं, उनकी जरा पसंद की चीज ना हो आप कहते हैं पता नहीं माँ बाप ने जुर्म कर दिया, कोई उनका रोजा रखवा के उनकी पसंद की चीज नहीं रखी। वलौ काना बिहिम खसासा, सिर्फ एक भूख का रोजा, सिर्फ ऐसा तो खोलिए, सारा कुछ दूसरों को खिलाएं और खुद भूखे, पानी खजूर बस। ये चीज जब तक नहीं आएगी हम कभी दीन में आगे नहीं पनप सकते, खुद भूखे रह के खाओ। और ये वो तरबियत ही उम्मत की जो नबी सल्लम ने की कि यरमूक में एक प्याला पानी का एक से दूसरे और होते हुए आखिरी तक पहुंच गया, किसी ने ना पिया, क्योंकि यू सेरू नाला अनफुसिहिम, अपनी जात से दूसरों को अहम समझे। हम अस्तग़फिरु, हम देंगे दूसरों को वो जो अपना नहीं है, हमने नहीं खाना उसको दे दो, बच गया दे दो, जाया हो गया दे दो, वो भी बड़ी बात है दे दें, हम तो वो भी नहीं दे पाते, हम कहते हैं छोड़ो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी तरजीहात बदल जाए। और यहां आप देखिए कि शुरू में खौला नाम की औरत है, एक औरत थी, उसका एक जाती जिंदगी का वाक्य कुरान का हिस्सा बन गया, यहां एक आम सहाबी है, क्या पता चला, अल्लाह जब किसी की कदर करे एनी टाइम कर सकता है, और आपकी मेरी भी कर सकता है। आपको क्या पता आपकी कौन सी नेकी आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन चुकी होगी अल्लाह के हाँ। तो लिहाजा यहाँ अब अल्लाह ताला ने दिलों से गिल खत्म किया। ये कब होगा, ये ग्रो, ये टीम, ये उम्मत कब बनेगी? जब दिलों से गिल निकलेगा। देखिए ना, माँ तो नहीं बच्चे को खिला के इज्जत लाती, क्योंकि उसके पेट का हिस्सा है, दिल में बच्चे के लिए गिल नहीं है। लेकिन आप किसी दूसरे को ऐसा करें 10 दफा सोचेंगे। तो इसलिए आगे बड़ी प्यारी दुआ सिखाई गई, वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यकूलूना रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और वो इन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए, जो कहते हैं हमारे रब हमें और हमारे इन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ न रख। ऐ हमारे रब, तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। ये आज की दुआओं में से एक दुआ है। कसरत से मांगिए, कसरत से मांगिए ये दुआ कि अल्लाह हमारे दिलों के गिल खत्म कर दे। याद रखिए, जिनके पास थोड़ा होता है ना, उनके दिल में दूसरों के लिए थोड़ा गिल होगा। जिनके पास ज्यादा होता है ना हर चीज, मैं माल की नहीं बात कर रही, सब कुछ, रिसोर्सेज, घर, गाड़ी, दूसरी, वहां एक दूसरे से हसद बहुत ज्यादा। सिस्टर्स बताती हैं, कहती हैं कुरान पढ़ने से पहले भी बड़ी बड़ी दावतें हम करते थे, दोस्तों का हल्का था, किटी कैट, किटी पार्टी, और पार्टी कौन सी कमेटी पार्टी और कौन सी पार्टियां, लेकिन जलते थे दोस्तों के घर जाके। हाँ देखो इसकी डिशें देखो जरा, देखो वो तो बेचारी रात खड़ी रही कि 20 डिशें बनाऊं ताकि कल तमगा मिलेगा, इसने 20 डिशें बनाई। कहती हम खुश थोड़ी होते थे खा के, हम फिर भी नक्श ही निकालते थे जान के कि जरा तो उसको लगे कि नहीं तुमने कुछ कमी छोड़ी है। कुरान ने हमारी तरजीहात बदल दी। अब सिर्फ दाल चावल पका के कोई दोस्त बना बिठा ले तो हम उस पर बड़े खुश हैं। दुनिया का डिस्प्ले और दुनिया की कसरत दिलों में बुग़्ज़ पैदा करती है। अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये नुक्ता है आज के पारे का, दिल से गिल को निकालना है, बुग़्ज़। और बुग़्ज़ क्या होता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं रा जांदे दा वैर, ना लेना ना देना, बस रा जाता कोई बंदा बुरा लग रहा है। किसी का बच्चा कामयाब हो गया, आप कहते हैं मेरा क्यों नहीं हुआ। अब आपका हो ना, आप कहते उसका ना हो। आ किसी की बेटी की बड़े अच्छे घर शादी हो गई, मेरे घर मेरी बेटी की क्यों नहीं हुई। ये है बुग़्ज़, निकालिए। ये गंदा बर्तन नहीं है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत आएगी। तो दिल को साफ करना है, और अल्लाह हमारे दिलों को खुला कर दे। और वल्लाह की अगर आज के उलमा आपस में एक दूसरे के साथ और दूसरे लोग उलमा के बारे में से ये गिल निकाल दें तो उम्मत जुड़ जाएगी। उम्मत के जोड़ने का यही रास्ता है कि अल्लाह गिल भी निकाल दे, शुख भी निकाल दे। जितना दिल बड़ा करता जाएंगे, लोगों की गलतियों को बर्दाश्त करेंगे, फिर वो नहीं होता कि गलती करे और पकड़ो, ठहर जाओ जरा, ये गलती किया ना मैं भी तुम्हें पूछती हूँ। नहीं, मैं पहले गलती को समेटूंगी, समाऊंगी, फिर मैं उजर करूंगी। नहीं नहीं, बेचारी का ये मसला होगा, ये होगा। बिलीव भी, हम तो नेकी के कामों में भी इतने गुनाहगार हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ हमें तो नेकियों के कामों के गुनाह बख्शवाने के लिए वो और नेकियां करनी पड़ेंगी। हम तो हज और उमरा जो कराते हैं उसको बख्शवाने के लिए फिर एक और हज और उमरा करने की जरूरत है, क्योंकि रस्मी दीन है, शौरी दीन नहीं है। अल्लाह ताला हमें निकाल दे ऐसी चीजों से। आगे फिर निफाक के कुछ किस्से। अलम तर इलल लजीना नाफकु यकुलूना लिखवानिहिमुल लजीना कफरू, तुमने देखा नहीं इन लोगों को जिन्होंने मुनाफकत की रविश इख्तियार की। असूल वही है, जहां जंगो जिदाल की बात वहां निफाक की बात। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे। देखिए मुनाफिकों के गठजोड़ ऐसे होते हैं, तुम रहे तो हम भी रहेंगे, तुम निकल गए किसी काम से हम भी निकल जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने झूठी तसल्लियां दी थी कुछ लोगों को कि अगर तुम रहोगे ना दुश्मनी में, अगर तुम निकल रहे हो तो हम भी चलेंगे। यानी ऐसे बेकार किस्म के गठजोड़ थे कि पहले कहा और ऐन वक्त पे उनका साथ छोड़ दिया। याद रखिएगा एक बात, अपने दिमाग से सोचे, अपनी अकल से सोचे। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप माशाल्लाह पिछले 30 दिन से इधर आ रहे हैं और 28वें पारे पे आज पहुंच गए। क्यों आ रहे हैं? आपने दिमाग से सोच के आ रहे हैं ना, और आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि फलां आ रही है तो मैं जाऊंगी, और वो नहीं आएगी अपनी किसी मजबूरी में तो मैं नहीं जा रही, तो किसका नुकसान होगा? यही बात यहां करके बता दी गई कि क्या कहते थे, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों की मिसाल आपको दे सकती हूँ। वो कहते हैं खानदान में किसी जगह शादी हो, हम नहीं जाते। क्यों भाई, आप कौन से मसला? नहीं कोई मसला नहीं, वो फलां का मसला है उनसे जो हमारे खानदान में, तो उनकी वजह से अब हम भी नहीं जाएंगे। सुनी हुई ये बातें, आपके सर हिलते हुए दिखाए जा रहे हैं कि ये मसला बड़ा आम है। उनको नहीं बुलाया हम भी नहीं आएंगे, मामू को नहीं बुलाया तो हम नहीं आएंगे, पप्पो के घर तो अब मामू के घर में है तो खाला की वजह से नहीं जा रहे, खाला के घर है तो मामू की वजह से नहीं जा रहे। अपने दिल दिमाग से तो कोई रिश्ता निभा कर देखें। और याद रखिए ये निफाक है, जो ऐसा है वो तो निकल ही जाए, अल्लाह करे वो निकल जाए। क्यों? वो अल्लाह के लिए तो नहीं आया, वो तो उसके लिए आया जिसके निकलने की वजह से कह रहा है कि तुम निकल गए तो मैं नहीं आऊंगा। आगे सुनिए अल्लाह ताला उनके लिए क्या फैसला फरमाते हैं। मगर अल्लाह गवाह है वो कतई झूठे हैं, अगर ये निकाले गए तो ये इनके साथ हरगिज ना निकलेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी हरगिज मदद ना करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करेंगे भी तो पीठ फेर जाएंगे, फिर कहीं से कोई मदद ना पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। क्या पता चला कि ऐसे सियासी इल्हाक जो मुफाद परस्ती की बुनियाद पे होते हैं वो ज्यादा देर नहीं पनपते। आपको ये मिजाज पाकिस्तानी सियासत में भी दिखेगा। अब तो मुद्दत, मुझे लगता है सबने सियासत छोड़ दी है जब से मेरे तक खबरें नहीं पहुंचती। जब हम छोटे थे ना, जब बहुत ही छोटे थे, अभी भी हम छोटे ही हैं, लेकिन मुझे याद है कि उन दिनों में इलेक्शंस बहुत होते थे। मुझे आज भी याद है वो इलेक्शन जिसमें बेनजीर भुट्टो के मुकाबले पे शायद नवाज शरीफ खड़ा हुआ था, कुछ आपको भी याद होगा, कुछ ऐसा ही था। तो उन दिनों में टीवी पे लगा के हम बैठ जाते थे किसके वोट कितने, और बीच में वो हमें ड्रामे फिल्में गाने दिखाते रहते थे, वो इंतजार करते थे, वो गाने भी याद है किस किस के थे। अब वो दौर याद करें, फलां को उससे इलहाक, सियासी जमातें मिल गई, नून लीग मुस्लिम लीग फलां लीग उससे मिल गई, फिर वो पांच जमातों का इलहाक, और फिर वो टूटते कब थे पता ही नहीं चलता था, टूट जाते। जो इलहाक, इलहाक ये जुड़ना शर या मुफादात की बुनियाद पे होगा वो कभी नहीं पनपेगा। एक चीज हमेशा जुड़ी रहती है जिसको आज तक कोई नहीं जोड़ तोड़ सका, और वो है अला इन्ना हिज़्बुल्लाह, अल्लाह के नाम पे जो गिरोह जुड़ता है, जो दोस्तें जुड़ती हैं, जो बहनें जुड़ती हैं, जो मर्द जुड़ते हैं, वो फिर फतह के नुसरत शिकस्त के ख्याल वो कहते हैं हम नहीं हटेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के लिए आए हैं, जब अल्लाह हमें कहेगा कि निकलो फिर ही निकलेंगे। तो याद रखिए ये सारा अल्लाह के नबी की वो उस दौर की कहानी है। मैं सोचती हूँ अल्लाह के नबी की जिंदगी में कितने चैलेंजेस थे, इसके बावजूद हंसते मुस्कुराते खुशबाश दिखने वाले थे। हम पे इतना कुछ होता तो अल्लाह कर रहम करे, हम तो सर पे दुपट्टा बांध के बैठे होते, क्या बताऊं काम कितने हैं, वक्त ही नहीं मिलता हा? और अल्लाह अब उनके दिलों के पोल खोलता है। ला युकातिलूनकुम जमीया, ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला ना करेंगे, यानी इतनी जरूरत नहीं है कि खुल के सामने आए, क्योंकि मुनाफिक हमेशा पीठ पीछे से वार करता है, अंदर से लोगों को काटता है। लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर, ये आपस की मुखालफत में बड़े सख्त हैं। बजाहर ये लगता है कि ये बहुत आपस में एक हैं, एक कॉमन थिंग है इनकी इस्लाम। जब मुकाबले पे इस्लाम आएगा ये आपस में जुड़ जाएंगे, पूरी दुनिया के जुड़ जाएंगे, लेकिन अकेले में देखो तो कुलूबुहुम शत्ता, दिल इनके फटे हुए हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं, ये इन्हीं लोगों की मानित है जो इनसे थोड़ी मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान की सी है। अब ये है शैतान का तरीका है वारदात, स्टेप्स लिख ले। क्या सबसे पहले वो इंसान से कहता है कि कुफर कर, फर्स्ट हदफ कि दुनिया को काफिर कर दे, इनकार कर दे, अल्लाह को मानो ही ना। और जब इंसान कुफर कर बैठता है तो वो कहता है मैं तुझसे बरी उज़िमा हूं, यानी मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। कौन कह रहा है ये बात? शैतान। तो क्या हकीकत में अल्लाह से डरता है? तो झूठ है ना। तो लिखिए फिर, कई लोग मुंह से कहते हैं हाय बड़ा डर लगता है, हाय अस्तग़फिरुल्लाह बड़ा डर लगता है, लेकिन सुना है तुमने उसकी बेटी किधर जा रही है, अस्तग़फिरुल्लाह बड़ा डर लगता है, बस क्या बताऊं, ये झूठ है। अल्लाह का खौफ गुनाहों से रोकता है, एक ब्रेक लगती है, एक हैंड ब्रेक लगानी पड़ेगी अगर अल्लाह का खौफ है। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे और जालिमों की यही जजा है, अस्तग़फिरुल्लाह। इधर दो किसको कहा गया, शैतान और उसकी बात मानने वाला। अब आगे आखिरी रुकू है, बड़ा खूबसूरत रुकू है, इसकी खूबी आपको पता है, अल्लाह सुबहान तआला के नाम जितने ज्यादा इसमें आए हैं आपको शायद कहीं इकट्ठे ना मिले। एंड तक पढ़ूंगी फिर इस पे बात करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना मनत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, अल्लाह हमें अपना डर दे दे, और हर शख्स ये देखे कि इसने कल के लिए क्या सामान तैयार किया। कल कहकर क्यामत को करीब दिखा दिया या हमारी मौत, चलिए हम भी सोच लें 3 सेकंड तक, मैंने कल के लिए क्या तैयारी की है। जो ही लफ्ज कल आता है हम कहते हैं कल में भी टुमारो। आप कहेंगे कल की सब्जी भी ले ली है, गोश्त भी है, दूध भी है, इफ्तारी का भी सामान है। नहीं, ये दुनिया टुडे और कल आखिरत है। यहाँ बैठकर सोचिए कल के लिए वाकई तैयारी की, कल के कपड़े, कल की जूतियां, कल का घर, कल के खाने, सब कुछ यहां से अरेंज करके वहां जाना है। और दोबारा कल अल्लाह से डरते रहो। ये कुरान की वो आयत है जिसमें दो दफा इत्तकुल्लाह का लफ्ज आता है। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का डर करो, अल्लाह का खौफ करो, क्योंकि यकीनन अल्लाह तुम्हारे इन सब अमल से बाखबर है जो तुम करते हो। इन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए। खुदा फरामोशी की जिंदगी खुद फरामोशी है। तो अल्लाह ने इन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। वो कहते हैं ना, तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। याद रखिए, जो बंदा रब का नहीं रहता वो अपना भी नहीं रहता। फिर इतने गुनाह करता है कि खुद को भी आग में डालेगा। और यही लोग फासिक हैं। अल्लाह ताला हमें फिस से बचाए। और ऐसे लोगों का हाल क्या है? अगली आयत, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी वस्हाबुल जन्ना। दोजख में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले कभी यकसा नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही असल में कामयाब हैं। किस चीज में बराबर नहीं है जन्नती और जहन्नमी? किसी चीज में भी बराबर नहीं। ना जीना एक जैसा, ना मरना एक जैसा, ना खुशियां एक जैसी, ना गम एक जैसे, ना पहन ओढ़ना एक जैसा, ना खाना पीना एक जैसा। एक इधर दौड़ रहा है, एक उधर दौड़ रहा है, उसकी तरजीहत और उसकी कुछ, दो डिफरेंट लाइफस्टाइल है। देखिए, दुनिया में दो मुख्तलिफ किरदार है ना, तो मरते ये कैसे हो जाएंगे? ये दुनिया में पता चल रहा है कि कौन किधर जा रहा है। आपने पाकिस्तान जाना हो एक हफ्ते के बाद, आपके घर के हालात, आपकी मामूलात से पता चलेगा आप कहीं जाने वाली हैं। इसी तरह जिसने जन्नत में जाना होता है ना, उसकी भाग दौड़ बताती है जाना है। कहीं पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कहीं वीजा लगवा रहे हैं, कहीं सूटकेस ला रहे हैं, कहीं सामान। दुनिया में रहकर उस जन्नत की तड़प लग जाए, ये है फफिरु इलल्लाह। वलो अनजलना हाजल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशयतिल्लाह। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम इन लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें। करना चाहिए हमको भी गौर। ये दिल छोटा, नाजुक, बगैर हड्डी का, कांटा भी नहीं है इसमें, और इसके मुकाबले में पत्थर जैसा पहाड़। पत्थर फटे तो इस दिल की क्या कैफियत होनी चाहिए? खुद से पूछें, इस कुरान के बोझ से दिल खौफ से फट रहा है या बेखौफी भर रही है? देखिए, सुन सुनकर सुन नहीं होना। शुरू में कुरान सुनते हैं ना लोग तो रोते हैं, आंखों में आंसू, तड़पते, हाय मैं मर गई, हाय शुक्र है बच गई, हाय हाय। हर साल दौरे कुरान में मुझे इसका एक्सपीरियंस होता है माशाल्लाह। पहली दफा जो सुनता है उसका तो चेहरा बता रहा होता है, उसकी तो आंखें बता रही होती है, उबली पड़ती हैं आंखें। और दो तीन बार सुन ले तो टैली कर रहे होते हैं, पिछले साल ये बताया था, इस साल नहीं बताया, ये तो पिछले साल भी बताया था, ये तो पहले ही पता है, अभी देखना अगली आयत में वो ये बताएंगी। इन बातों में पढ़कर जो अंदर से खशियत लेनी थी वो नहीं आती। ये बिल्कुल ऐसी है जब पहली दफा कोई खाना खाते हैं ना, बड़ा मजा आता है, दूसरी दफा भी अच्छा लगता है, तीन चार बार खा लें तो कहते हैं कुछ टेस्ट कम नहीं हो गया? नहीं, आप यूज्ड टू हो गए हैं। तो इस कुरान को हमेशा नया रखें, न्यू टेस्ट, नए जज्बे, और दुआ करें हमारे दिल फटे। फटेंगे तभी तो अंदर से गंदगियां निकलेंगी, दबेंगे, प्रेस करेगा कोई, फिर ही तो एक नई शक्ल हमें मिलेगी। और दिल ना फटे कुरान की बात पे तो उस रब की बात सुन लो कि हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबी वश्शहादा। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गायब और जाहिर हर चीज का जानने वाला, वही रहमान और रहीम है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह नहायत मुकद्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला और सबसे बढ़ के अल मुहैमिन, निगेबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बजोर नाफिज करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। कैसे अपना हुक्म नाफिज करता है? अकलौता बेटा 20 साल की उम्र में ले गया अल्लाह, मानो को अल्हम्दुलिल्लाह, ये है बजूर। बंदा जूं करे चां करे फायदा कोई नहीं, जो होना है वो हो गया। पाक है अल्लाह इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और इसको नाफिज करने वाला है और इसके मुताबिक सूरत गरी करने वाला। इसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज जो आसमान और जमीन में है इसकी तस्बीह कर रही है। वो जबरदस्त और हकीम है। इतने नाम इकट्ठे पढ़कर अल्लाह के बंदे का दिल ना कांपे तो कब कांपेगा। किसी एक बड़ी हस्ती का नाम ले, वो इधर आ गया, वो मौजूद है इधर, कैसे दिल कांपता है। सदरों वजीरों के नामों पे दिल कांप कांप जाते हैं, पुलिस मैन का नाम सुन के दिल डर जाता है। और आप देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, और यहाँ रात को भी आयतें पढ़ी जाती हैं, इसमें आप देखिए कि एक बड़ी खूबसूरत सिफत अल मुहैमिन। मुहैमिन का लफ्ज़ हैमना से है। हैमना कहते हैं मुर्गी का अपने बच्चों को परों में छुपा लेना। आइए जरा इस पे एक वीडियो देखते हैं छोटी सी।
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قالها حين يصبح فقد أبغلها شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
يا المهيمن ये छोटी सी मुर्गी या जो भी है ये मुर्गा भी अपने बच्चों को समंदर की लहरों से ऐसे बचाती है अपने परों में लेकर, तो वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने लगा कि आपको मुझे दुखों और मुसीबतों में छोड़ सकता है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तिलावत सुने इस आखिरी आयत की और दिल से कहें अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह मुझे सबसे बेनियाज करके अपना न्याजमंद कर दे।
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
سبحان الله। आप देखिए अल्लाह के नामों में कितना सुकून है। ऐसे लगता है जैसे बंदे के इर्द-गिर्द एक हिसार चला गया। अल्लाह हमें अपना कुर्ब दे दे।